शांति। सूरज भाई जी के बारे में तो सब जानते हैं, उनके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं दो लाइन बोलना चाहती हूँ। भाई जी तो बचपन से ही ज्ञान में आए और माउंट अबू में 1968 से सरेंडर अपने समर्पित जीवन दे रहे हैं। भाई साहब तो योग का प्रयोग में बहुत रुचि रखते हैं और विभिन्न प्रयोग करते ही रहते हैं और ब्राह्मण परिवार को भी बहुत सारी योग की सॉल्यूशंस देते रहते हैं। टीवी में भी समाधान शो आप सब देखते होंगे। भाई साहब ऑस्ट्रेलिया और दूसरे विभिन्न देशों में भी ट्रैवल करके बहुत सारी योग बटिया और बाबा का ज्ञान अनेक ब्राह्मणों को देकर उनको लाभान्वित किए हैं। अब भाई साहब अभी करेंटली तीनों कॉम्प्लेक्स जो है शांतिवन, ज्ञान सरोवर, मधुबन के अभी किचन डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, अभी भाई साहब से सुनेंगे।
ओम शांति।
अब भाई साहब को वेलकम करने के लिए बहने आए हैं, अभी भाई साहब को वेलकम करें।
सब्जेक्ट फॉलो फादर है, मुझे यहाँ बैठकर कई बातें याद आई। हमारी रिसर्च और फॉलो फादर की स्थिति, दोनों का कुछ गहरा ही नाता है। पहली बात मुझे यहाँ याद आई, बाबा ने कहा, सुना होगा आप सबने, कभी कभी ये बात आई है व्यक्त मुरली में, शायद एक ही बार आई है, तुम्हारी संपूर्णता का प्रकाश संसार से अज्ञान अंधकार को दूर करेगा। तो बहुत गहरी बात है, हमें संपूर्णता की ओर चलना है। हम नहीं चलेंगे तो समय दौड़ाएगा, समय को अपना काम करना है। दूसरी बात याद आई, तुम कर्मातीत होंगे, कर्मातीत अवस्था और महाभारत युद्ध, तुम कर्मातीत होंगे तब लड़ाई लगेगी। ये तो शायद नहीं बोला लड़ाई लगेगी तब तुम कर्मातीत होंगे। अनिता दीदी, आप मुरलियां पढ़ते सुनाते हैं मेरे से ज्यादा, दीदियां बैठी हैं यहाँ, उन्हें पता रहता है। कर्मातीत होंगे तो लड़ाई लगेगी। तो फॉलो फादर जो हमें बाप समान बनाता है, हमें उसकी ओर तेजी से कदम बढ़ाने हैं। समय तेजी से बदलता जा रहा है, आप सब भी देख रहे होंगे दुनिया में, मुझे तो पता चलता है क्योंकि बहुत लोग आते हैं अपनी अपनी बात लेकर। मानसिक रूप से लोग कमजोर होते जा रहे हैं, काफी कमजोर, समस्याएं बढ़ रही हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए मानसिक रोग, डिप्रेशन आदि भी बहुत बढ़ रहे हैं। बच्चों की स्थिति, छोटे बच्चों की स्थिति भी थोड़ी सी भयानक सी दिखाई दे रही है। हम सभी के योग के वाइब्रेशंस की संसार को बहुत जरूरत है, इसलिए सभी बुद्धिमान बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं। मैं कह सकता हूँ जो श्रेष्ठ उमंग में रहते हैं, जो संसार के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो आप सब यहाँ बैठे हैं। ठीक बात है या नहीं? मुझे बार बार ये अंत प्रेरणा आती रहती है, बाबा के महावाक्य हमने वो बहुत बार सुने हैं, पुरुषार्थ भी सबका चला है, लेकिन मुझे आजकल वो चीज बहुत ज्यादा आने लगी है कि अभी संसार को तुम्हारी सकाश की बहुत जरूरत है। दिखाई दे रहा है तो बहुत सारी चीजों को पार करने के लिए मैं पहले एक दो चीज आपको कहूंगा जिसका आप सब प्रयोग भी करेंगे और संसार को मदद करेंगे। बहुत ज्यादा मदद करनी है, अब हम संसार के लिए हैं। ये मन बनाकर जाएं इस बार यहाँ से, अपने लिए अपने परिवार के लिए, वो तो आप ही हो जाता है। जब हम विश्व सेवा में लगते हैं तो अपना कल्याण और परिवार भी सहज निर्विघ्न सफलतापूर्वक सब कुछ आगे बढ़ता है। मैंने एक चीज देखो, मैं तो कुछ पढ़ता नहीं हूँ किताबें, पर एक चीज बहुत अच्छी अनुभव में आई कि जैसा हम संकल्प करते हैं ब्रेन वैसा ही खुद को मैनेज कर लेता है। इस पर अगर ब्रेन को जानने वाले वैज्ञानिक काम करें तो संसार को बहुत कुछ दिया जा सकता है। एक पेशेंट पेशेंट है, उसको भारी बीमारी है, हम उसको पक्का करा दें मैं ठीक हो जाऊंगा, वो ये संकल्प करने लगे तो ब्रेन अपने को उसी तरह सेट कर लेगा, मैनेज कर लेगा, और ब्रेन से बहुत सारे रसायन जो निकलते हैं वो उसी तरह के निकलेंगे, व्यक्ति ठीक हो जाएगा। आजकल मैं 5-7 जगह एक अनुभव सुना चुका हूँ, वो आपको भी सुना देता हूँ। हंसी का अनुभव भी है और वंडरफुल चमत्कारी का अनुभव भी है, फिर हम बाप समान पर चलेंगे, क्योंकि मुझे इस संकल्प के बारे में साइलेंस पावर, हम क्या क्या करें अपने मन को बिल्कुल साइलेंट कर दें, डीप साइलेंस में चलें, इसका अच्छा रहता है। अभी दिल्ली के ग्रुप में एक भोली सी माता आई, ग्रुप था साथ में, दो माताओं ने सुंदर अनुभव सुनाए। इस भोली माता का अनुभव सुन लें आप, हंस भी लें और राज भी समझ लें। भोली माताएं, समझ में आता है कि कार्य हम नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है? हाँ, ये सब ऊपर से कंट्रोल्ड है खेल। मैं हंसी में कहा करता हूँ कि काम ऊपर वाला कर रहा है, उछल कूद नीचे वाले करते हैं, मैंने किया मैंने किया। भोली माता आई, किसी के घर में काम करती है, समझ सकते हैं आप कितनी पढ़ी लिखी गरीब। तो कहा मेरी जो मालकिन है उसको कैंसर होगा, ये बात 3-4 मास पहले की है, और कैंसर बहुत भयानक, दिल्ली की है, वो दिल्ली में इलाज नहीं हुआ, मुंबई ले गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब कोई इलाज नहीं, वापस ले जाओ। घर आ गई वो, और वो कितनी निराश रही होगी हम सब समझते हैं। इसने जब देखा कि मेरी मालकिन अब इसकी मृत्यु समीप आ गई है, इसने उसमें उमंग भरना शुरू किया, ज्ञान वाली माता, उमंग भरना शुरू किया और उसको कहा, अब देखो माताओं की अंग्रेजी, उसको कहा सवेरे उठकर रात तक 21 बार याद करो मेरा कैंसर कैंसिल हो गया है। और वो जो इसकी माल ये सुनाती रहती होगी कुछ कुछ पहले भी उसको, तो उसने ये बात मान ली, शुरू कर दिया मेरा कैंसर कैंसिल हो गया है, और 1 मास में वो ठीक हो गई। देख लो आप, दोनों ज्ञान में आ गए पति पत्नी। अब बहुत लोग मिलने वाले थे, मैं उससे ये पूछना भूल गया कौन से सेंटर से तुम्हारा नाम वाम क्या है, ग्रुप के ग्रुप आ रहे थे, एक ने और अच्छा सुनाया, ऐसे ही चले गए। पर फिर मैं याद करने लगा, इससे उसका नाम वाम सेंटर पूछ लेता तो अच्छा रहता। देखो ये वंडरफुल अनुभव है ना, संकल्प शक्ति ने, ऐसे मेरे पास 5-7 अनुभव आ गए नजदीक नजदीक के, मृत्यु, कैंसर से मृत्यु की तरफ पहुंचे गए लोग पुनर्जीवित हो गए। एक केस चल रहा है, उसका भी कुछ किया बहन है, वो सेंटर इंचार्ज है। बोन कैंसर से ऐसी स्थिति हो गई कि अगर उसको खड़ा कर दें तो शरीर टूट के गिर जाएगा, बोन खत्म, गल गई सारी। लेकिन आज पता चला वो तो खुद उठ के बैठ गई, पैर नीचे लटका लिए बेड से। तो हम सभी के पास योग की शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है, और ये धीरे धीरे बिल्कुल प्रूव हो जाएगा कि मेडिकल साइंस से भी बड़ी साइंस ये स्पिरिचुअल साइंस है, ये बाबा की साइंस है, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी और हम सब इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि आप सभी संकल्प शक्ति के प्रयोग भी चालू रखें। मास्टर सर्व शक्तिवान के जो प्रयोग हैं, वो संसार में नॉन वीके भी बहुत कर रहे हैं। मेरे को फोन आते हैं, विशेष करके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इन देशों से बहुत आते हैं। पाकिस्तान से भी आया एक लड़की का, मुस्लिम, जिसने मास्टर सर्व शक्तिवान का अभ्यास किया और उसका डिवोर्स होने वाला जो झंझट था वो ठीक हो गया। तो देखो, बाबा का ज्ञान, उसके संकल्प अब संसार में पहुंच रहे हैं, तो लोग फिर ज्ञान में आ रहे हैं। जो भी सुनाता है मैं उन्हें कहता हूँ, अब सेंटर में जाके कोर्स करो, ज्ञान लो, तो तुम्हारा जीवन और अच्छा हो जाएगा। हमें फॉलो फादर करना है। दो अर्थ हैं, एक जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हम करें। कई सोचते हैं हमें कैसा पता चले ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, क्या किया ब्रह्मा बाबा ने, बताओ आगे वाले। सब कुछ छोड़ दिया। अब आप सब कुछ कहाँ छोड़ेंगे, थोड़ी सी यहीं की बात बताओ, जमीन की। फॉलो फादर का दूसरा अर्थ है, ब्रह्मा बाबा ने वही किया जो शिव बाबा ने कहा। ये सोचने की बात ही नहीं कि हमने तो उसको देखा नहीं, देखते तो शायद हम भी फॉलो कर लेते। सोचते हैं कई लोग, देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखने वाले भी फॉलो नहीं कर पाए। देखना किसी भी महान व्यक्ति को सभी देखते हैं, वो तो आबू वालों ने भी देखा था बाबा को। देखने की दृष्टि सबकी अलग अलग, महान व्यक्ति की दृष्टि महान व्यक्ति को पहचान सकती है, नहीं तो नहीं पहचान सकती। हमारे पास कैसी दृष्टि है, हम क्या खुद कर रहे हैं, उस अनुसार, उस आधार से हम किसी भी महान व्यक्ति को पहचान पाते हैं। तो मैं इस टॉपिक को केवल ज्ञान की दृष्टि से पॉइंट आपको सुना दिया जाए वो नहीं करना चाहता। वो तो जब ग्रुप बनेंगे और इस सब्जेक्ट को जो ग्रुप लेगा उसको हम लक्ष्य रखते, हर मास एक चीज भेज दी जाएगी। 11 मास तक चलता है 12 में से, तो 11-12 चीजें आपको मिल जाएंगी, वो मैं थोड़ी थोड़ी आपके सामने रखूंगा। और भी जो सरल बातें होंगी हम उसमें करेंगे, जो आप ग्रुप में डिस्कशन में निकालेंगे उसको उसमें ऐड किया जाएगा। पर हम इस तरह विचार करेंगे, और सभी जो ग्रुप्स हैं, चाहे किसी का कोई भी ग्रुप हो, वो बाप समान ले जाने की ओर ही है, हमारी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने की ओर ही होता है। इसलिए 4 या 5 ग्रुप जो भी होंगे सब में आप हिस्सा लेंगे बहुत अच्छी तरह। जो आज सुना रहे थे परिवर्तन और प्रगति, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्वराज्य अधिकारी का बहुत गहरा सब्जेक्ट है, तो आप हिस्सा लेंगे सभी अपने अपने ग्रुप्स में अच्छी संख्या में, क्योंकि काफी ज्यादा भाई बहने हैं। तो सबके अच्छे अच्छे ग्रुप बन जाएं। चार सब्जेक्ट जो हमारे हैं, बाबा का पहला सब्जेक्ट ज्ञान का, ब्रह्मा बाबा का, यदि हम इस बात पे विचार करें, क्योंकि तो हमें बहुत प्रैक्टिकल लेना है इन चीजों को। बाबा ने सब कुछ समर्पित कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया। अधिकतर भाई बहने सुनते ही क्या करते हैं, हमसे नहीं होगा, ठीक बात है ना भाई, ये हम नहीं कर सकते, छोड़ो, जितना हो जाए उतने ही अच्छा है, जहां तक बाप समान बनने की स्थिति पहुंचेंगे ठीक है। हम बहुत प्रैक्टिकल बना दें, ज्ञान की दृष्टि से देखें, बोलो क्या कहेंगे आप। ज्ञान पहला सब्जेक्ट बाबा का, ज्ञान में परिपूर्ण, ज्ञान का चिंतन बहुत सुंदर, और ज्ञान में भगवान पढ़ाते हैं संपूर्ण नशा। भगवान ने ज्ञान दिया है और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, संपूर्ण सत्य, संपूर्ण गुह्य, सारे संसार की फिलोसफीज का सार, अगर हमें वो संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए तो सारे संसार के ज्ञान पर हमारे इस ज्ञान की विजय, ये भारी पड़ता है। मैं तो देखता हूँ ना, भारी पड़ता है, क्योंकि बाबा का ज्ञान संपूर्ण रूप का ज्ञान है। मुझे एक दो जगह जाने का मौका मिला पिछले साल में, उसमें एक सुंदर जगह थी ब्रह्मोस, आप सब जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल भारत का, जैसा आज सुन रहे थे आप, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता, लेकिन उसके डायरेक्टर ने ये नेट पे कुछ क्लासेस देख ली तो मुझे ढूंढ रहे थे कौन हूँ मैं, पता लगा उन्हें तो कॉन्टेक्ट किया, तो मैं वहाँ गया। डीप साइलेंस, वहाँ भी कोई चिड़िया भी पर नहीं मार रही थी, बहुत बड़ा कैंपस। डिप्टी डायरेक्टर जो था वो मुझे लेने आया बाहर, तो जब डायरेक्टर के कमरे में पहुंचे, बड़ा था, बहुत बड़ा कमरा, तो वो खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, आइए। तीन बोले उसने, हम मैं कहूँ भाई ये है तो डायरेक्टर का कमरा, ये कौन बैठा है, एक ही बैठा था। अब आप जानते हैं ये बड़े लोग बड़े सिंपल भी रहते हैं, कोई बंठन के ऐसे वैसे नहीं, सिंपल से बेचारे ने पैंट सफेद सी और कुर्ता पहना था, तो बैठाया। मैंने कहा ये आपको कहाँ से पता चल गया सब, कि ये सुन के ही तो आपको बुलाया है। तो मैंने देखा बाबा की नॉलेज, उनके पास एक सब्जेक्ट की नॉलेज अपनी, और बाबा की नॉलेज संपूर्ण ज्ञान, भारी है सारे ज्ञान पर दुनिया के, क्योंकि लोगों के पास जीने का ज्ञान नहीं है, क्या सोचें क्या न सोचें ये ज्ञान भी नहीं है, इसलिए हाल सबका एक जैसा हो रहा है, कोई कितना बड़ा आदमी हो। मैंने कुछ गहरी चीजें देखी, जान ली, बाबा की इससे आपे ही आती हैं वो सब चीजें, जब हमारा योग अच्छा है, हमारी बुद्धि डिवाइन है, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई। देखो, आत्मा की बैटरी जिसको हम 16 कला कहते हैं, 100% चार्ज थी ना आत्मा सतयुग में, कम होते होते 10 आई, 10 से भी कम आई। एक चीज समझ में आती है, और आप सबको भी इसकी अच्छी जानकारी हो, डॉक्टर भी कुछ बैठे हैं हाथ उठाएंगे, कौन कौन डॉक्टर हैं? अच्छा, इतने सारे, मैं भी नहीं सोचा था, 12, बहुत अच्छा। देखिए, आप लोगों को मेडिकल की नॉलेज है, मैंने मेडिकल कॉलेज का दरवाजा भी नहीं देखा है अब तक, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई कि गर्भ में बच्चे के ब्रेन का निर्माण आत्मा की जो ये डिग्री है, जहाँ आत्मा पहुँच गई है, उस अनुसार होता है। माँ बाप से नहीं, आत्मा के प्रवेश होने के बाद। तो अब जब आत्माएं 10 डिग्री से नीचे पहुंच गई हैं सभी, तो ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है, ब्रेन की जो क्षमता है, वो भी 10 डिग्री से कम कम है, और पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है, बातों का प्रेशर ज्यादा है, फ्रेंड सर्किल का प्रेशर ज्यादा। मैं युवकों की बात कर रहा हूँ। जॉब में आ गए तो फिर काम काज का, ऊपर वालों का प्रेशर ज्यादा है, तो ब्रेन उसको एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है। चिंतन करेंगे सभी डॉक्टर अच्छी तरह से, इसलिए। और एक बड़ी चीज है कि आजकल के मोबाइल का इफेक्ट, चाहे लैपटॉप या कंप्यूटर रहता है सबके सामने काम करने के लिए ऑफिस में, उनका इफेक्ट ब्रेन की शक्तियों को और डैमेज कर रहा है। इसलिए मानसिक रोग तूफानी बनते जा रहे हैं, बहुत तूफानी। मेरे पास 2 युवक आए जिन्होंने संस्कृत में PhD किया, चेहरे उनके उतरे हुए युवक, 30 साल से कम कम होंगे। मैंने उनसे पूछा, अरे आप दोनों ने PhD कर लिया, आखिर क्या खुश नहीं हो? खुश क्यों नहीं, आपके चेहरे क्यों उतरे हुए? मैंने कहा, हमारे यहाँ देखो ज्ञान सरोवर में सबके चेहरे चमक रहे हैं, आप तो संस्कृत में PhD किया, माना बहुत कुछ ज्ञान ले लिया होगा। उत्तर था, PhD करने में सारा जो पढ़ा ना, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, दुनिया भर का साहित्य, माइंड कंफ्यूज हो गया है। तब मैंने उनको गीता की बात याद दिलाई, श्री कृष्ण, वो तो श्री कृष्ण ही कहेंगे, श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, अनेक श्रुतियों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि जो भ्रमित हो गई है, श्रुति कहते हैं वेदों के मंत्रों को, अनेक श्रुतियों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि जो भ्रमित हो गई है, उसको तुम मेरे स्वरूप पर स्थिर करो, तब तुम समत्व योग को प्राप्त होंगे। तो मैंने कहा, बस समझते हैं ना इसका अर्थ, तो कहा ये कर लो तो ठीक हो जाएगा। तो चले गए, पता नहीं उन्होंने राजयोग सिखाया नहीं। तो देखिए, हमारा ज्ञान बाबा का, अब हमारा ही ज्ञान है ना, बड़ा जबरदस्त, संसार के सभी ज्ञान पर भारी बाबा ने इस ज्ञान के को चिंतन करके इसको अपनी विजडम बना दिया। इसलिए ब्रह्मा संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान, फॉलो करेंगे हम, सबसे अधिक बुद्धिमान, ज्ञान का अभिमान नहीं, सबसे अधिक डिवाइन बुद्धि, वाइज पर्सन, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान के प्रति रुचि, इस पर बहुत ध्यान देंगे। हमारे पास रूपेश भाई मुरलियों का क्वीज का एक चलाते हैं, बहने भाई जब प्राइज लेने आते हैं, हर ग्रुप में आ जाते हैं, तो मैं सबसे पूछता हूँ अनुभव क्या रहा, तो बहुतों का अनुभव है कि व्यर्थ खत्म हो गया, कईयों के थोड़ों के अनुभव है, ये बात थोड़ों की है, हमारा डिप्रेशन खत्म हो गया, बहुत सुंदर बात है ये, डिप्रेशन खत्म हो गया। तो ज्ञान पर हम विशेष ध्यान दें फॉलो फादर में, और भी आप चिंतन करेंगे, ग्रुप में डिस्कस करेंगे क्या करें हम इसके लिए। इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम सारा दिन मुरली पढ़ते रहे। कई लोग सोचते हैं फलानी दादी ने 22 बार रोज मुरली पढ़ी थी, मैं भी पढ़ूं, 22 बार की जरूरत नहीं, समझदारी पूर्वक 2 बार पढ़ना ही काफी होता है, जो बुद्धिमान है एक बार में ही सब पिकअप कर लेते हैं। योग, योग के सब्जेक्ट में भी हमें बाबा को फॉलो करना है, जिसमें बहुत आत्माएं थोड़ी कच्ची हैं, हमें पक्का होना है। अमृत वेला विशेष रूप से, उसके बाद बाबा का ज्ञान का चिंतन बहुत होता था। अगर बाबा 5 बजे तैयार हो गए हैं नहा धोके, तो 5 से 6 ज्ञान के चिंतन में ही मग्न रहते थे। कोई मिलने भी जाता था तो क्या कहते थे, सुना होगा आपने जानकी दादी के द्वारा, बच्चे बाबा बच्चों के लिए गरम हलवा बना रहा है, तुम अब क्यों आ गई, हंसी भी करते थे। मतलब चिंतन हो रहा है, हम ध्यान दें दोनों बातों पर। इसी में बाबा जैसा योग के बारे में हम कुछ बातें ले लें। बाबा अपने लास्ट के 3 वर्ष में, जब मामा ने देह छोड़ा उसके बाद, बहुत ज्यादा एकांत में हो गए थे। उससे पहले भी करते थे, लेकिन उसके बाद बाबा को जैसे उनकी संपूर्ण स्थिति बहुत खींचने लगी थी। झोंपड़ी में बाबा ज्यादा समय रहते थे, झोंपड़ी बहुत सिंपल होती थी बाबा की, जो अब है ये नहीं, बहुत सिंपल झोंपड़ी। एकांत और बहुत गहन तपस्या, तो हम संकल्प कर लें हमें ब्रह्मा जैसी तपस्या करनी है। उनकी तपस्या का ही यादगार महादेव भी हैं, ब्रह्मा जैसी तपस्या। फिर कर्म योग बहुत अच्छा किया बाबा ने, बैठ के भी बहुत किया, चिंतन भी बहुत अच्छा किया, स्वदर्शन चक्रधारी भी परफेक्टली बन गए थे। जो चक्र, जो बाबा ने 5 स्वरूपों की बात कही, ये बाबा के जीवन में प्रैक्टिकल था। और इसी योग के सब्जेक्ट में बाबा का स्वमान और भविष्य का नशा, जिसे हम फॉलो करेंगे। मुझे बाबा की सबसे अच्छी बात ये लगती है, भविष्य का नशा। लेकिन अकेला ब्रह्मा बाबा तो नारायण नहीं बनेगा ना, और भी नारायण है, मुरली में भी आता रहता है। और हम सब बड़े देवता हैं, छोटे नहीं, बड़े छोटे तो समझते हैं ना सभी, छोटे देवता तो बहुत हैं, दूसरे बड़े पद वाले देवता, बड़ी स्थिति वाले देवता। तो हम अपने भविष्य के नशे को भी वैसा ही स्थान दें जैसा ब्रह्मा बाबा ने दिया था। ये अलग बात है कि उन्हें भविष्य का बिल्कुल साक्षात्कार करा दिया था शिव बाबा ने, वो उनकी अलग बात है, लेकिन वो साक्षात्कार हमें भी करा दिया है। करा दिया है या नहीं, उत्तर नहीं आ रहा, मुस्कुरा रहे हैं, सचमुच करा दिया है, नहीं कराया तो कर लें। अपने भविष्य को खुद हम निर्माण करेंगे, अपनी डेस्टिनी को, अपने श्रेष्ठ भाग्य को हम खुद निर्माण करेंगे। और जो बाबा ने पिछली मुरली में हमें काम दिया, 5 स्वरूपों के अभ्यास का पहले ही दिया था, और बहुत बार ये मुरली चली है, कम से कम 6 से 7 बार इस तरह की मुरलियां चली हैं बाबा की, हम इनको फॉलो करेंगे। और आपको श्योरिटी पूर्वक ये बात समझनी है कि अगर हम 5 स्वरूपों का बहुत अभ्यास करेंगे, जैसे बाबा ने कहा घंटे में एक बार, 5 सेकंड की बात तो छोटी सी है जैसे आज कराया सबको, लेकिन 1 मिनट से लेकर 3 मिनट एक बार में, 3 मिनट तक अवश्य उसका चिंतन भी हो जाए, वो स्वरूप भी हमारे सामने आ जाए। दो बातें, अपना स्वरूप हम क्रिएट कर लें अपने सामने, ये मैं हूँ, तो मैं उस श्योरिटी आपको कह रहा हूँ कि भविष्य का स्वरूप दिखने लगेगा। वो केवल मान्यता या कल्पना या ज्ञान के आधार पर नहीं रह जाएगा, हमें उसका स्वरूप नजर आएगा, हमें नशा चढ़ने लगेगा बहुत ज्यादा, हम ये हैं, मुझे ये ही बनना है, प्रैक्टिस करेंगे सभी, लग जाना है। मैं आप सभी को ये कहूंगा, अब एक विशेष बहुत अच्छी धुन की जरूरत है हम सबको, जो ये काम कर सकेंगे उनके पीछे संसार चलेगा। मैं आपको बाबा की कुछ बात याद दिला दूं, मैंने कभी कभी याद दिलाई है, पिछले ही साल बहनों ने वो बात पढ़ी है, व्यक्त मुरली में सुनाई है, किसने कैच की है आप देख लेना। बाबा ने कहा व्यक्त महावाक्य है जो संडे को मुरली चलती है, शायद 5-6 मास पहले की होगी, मुझे डेट तो याद नहीं, पर मैंने तब से वो बात अपने चित्त में समा ली है। आगे चलकर भारत की पॉलिटिकल पावर और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर दोनों मिलेंगी और तब भारत बहुत ऊंचाई की तरफ जाएगा। और बाबा के सुंदर शब्द हैं, भारत की नीतियों को सारा संसार मानेगा, अपनाएगा, तो हमारी स्पिरिचुअल पावर, हमारी रूहानी शक्ति, हमारी ज्ञान योग की शक्ति, इसका बड़ा भारी महत्व है। इसके महत्व को हम समझ लें, इसके महत्व को समझने वाला व्यक्ति फिर इधर उधर नहीं दौड़ता, मन को नहीं भटकाता, वो और इच्छाओं में नहीं जाता, सेवाएं तो उसके पीछे पीछे भागती हैं फिर। तो बाबा ने जिस तरह भिन्न भिन्न तरह की साधनाएं की थी वो हम भी करें। मुझे बाबा की एक दूसरी बात भी बहुत अच्छी लगती है, बाबा देखते थे ना संसार को, तो कहते थे जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो सब नहीं रहेगा, जो नहीं दिखता है वो आ जाएगा। बहुत ज्यादा दीप चिंतन में थे बाबा। अब इस चिंतन से क्या होता है, देखिए ये बात सभी को पुनः मैं अंडरलाइन करा देना चाहता हूँ, और मैं ये बात जहाँ भी जाता हूँ हर क्लास में एक बार जरूर सुनाता हूँ, ताकि सभी इस बात को अच्छी तरह ग्रहण कर लें। हमारा हर संकल्प, हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी पैदा होती है हर संकल्प से। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव पावर है, निर्माण शक्ति है। ज्ञान के जितने सुंदर संकल्प हैं मन में, उतनी ही सुंदर एनर्जी पैदा होती है जो हमारे ब्रेन को जाती है, जो हमारे चारों ओर फैलती है, ब्रेन को दिव्य बनाती है, इसको डिविनाइज करती है। और सबसे पावरफुल संकल्प हैं हमारे स्वमान के, उनसे सबसे ज्यादा एनर्जी ब्रेन को मिलती है, तो हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल हो जाता है। ये बात मैं आपको इसलिए भी कहा, इसको आप भिन्न भिन्न तरह से यूज करेंगे, लेकिन योग साधना के लिए भी ब्रेन को विशेष एनर्जी की जरूरत होती है। यही कारण है कि सभी लोग योगी नहीं बन पाते, थक जाते हैं, 2-4 दिन पुरुषार्थ करके बोर होने लगते हैं, माइंड और बुद्धि साथ नहीं देते। इसलिए सुंदर संकल्पों से ब्रेन को एक श्रेष्ठ डिवाइन एनर्जी देते रहें, ज्ञान का चिंतन, स्वमान, स्वदर्शन चक्र, ये सब जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हम सबको भी फॉलो करना है। इसलिए आप आयु में बड़े हैं या छोटे हैं, सब स्टूडेंट बनकर रहेंगे। तो ब्रह्मा जैसी साधना और कहीं बुद्धि नहीं। बाबा की मुरली आपको याद होगी, हमारी योग साधना का सर्वश्रेष्ठ और अंतिम स्वरूप है। मन बुद्धि को जहाँ चाहें, जब चाहें और जितना समय चाहें, जिस स्वरूप पर भी स्थिर करना चाहें, कर सकें। याद कर लेंगे, जो ऐसा करेंगे उनको ही टाइटल मिलेगा योगेश्वर। बाबा के महावाक्य, तब के जब बाबा की ज्यादा मुरली नहीं चलती थी, 2 साल पिछले वाले, योगेश्वर का टाइटल मिलेगा उन्हें जो ऐसा करेंगे। तो बाबा की तो यही स्थिति थी। तीसरी बात है उनकी धारणाओं को फॉलो करना। बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, आप सभी निकालना चर्चाओं में अपनी। बाबा बहुत एक्टिव थे, ठंडे नहीं, ठंडे नहीं, समझते हैं ना ये बात। तो सभी कल कर लेंगे, बाद में कर लेता हूँ, नो, फुल्ली एक्टिव। मैंने किसी की बात सुनाई तो हमारे रुपेश भाई मुझे कह रहे थे कि जो बहुत एक्टिव होते हैं वो इतनी लंबी आयु जीते हैं अच्छे, बाकी तो आयु बढ़ने के साथ ठंडे हो जाते हैं, शरीर भी ठंडे और मन बुद्धि भी ठंडी। बाबा बहुत एक्टिव थे, इसलिए हमारी तरह कुर्सी पे नहीं बैठते थे, पीछे सपोर्ट की भी जरूरत नहीं, बहुत बहुत शरीर को भी कंट्रोल में रखा था, बहुत अच्छा रखा था। जो बाबा कहते थे कि शरीर की नॉलेज भी फुल होनी चाहिए तभी नॉलेजेबल कहेंगे। शरीर की नॉलेज माना कोई मेडिकल नॉलेज नहीं, अपने शरीर को कैसे चलाना है, कब रेस्ट चाहिए, क्या खाना, कितना खाना, क्या नहीं खाना, इसका पूरा ध्यान रखना। तो बाबा बहुत एक्टिव थे, आलस उनके जीवन में किसी ने कभी नहीं देखा, नींद भी बहुत सतोप्रधान थी। ऐसे नहीं बाबा सोते नहीं थे, कई लोग कुछ गलत भी सुना देते हैं क्लासेज में, बाबा तो बहुत कम सोते थे, जागते ही रहते थे, ऐसा नहीं, सोते थे लेकिन बहुत सतोप्रधान। बाबा के शब्द हैं, कईयों ने सुने हैं, अभी याद आ जाएंगे सबको, मामा बाबा जब सोते हैं तो भी योगयुक्त, जब जगते हैं तो उठते ही फिर योगयुक्त, इसलिए उनका नींद का समय भी योग में गिना जाता है। कैसी सुंदर गुह्य गति है। तो धारणाओं पर हम बात कर रहे हैं, आप धारणाएं निकाल लेना। बाबा की मुरलियों में सब आती हैं, जो मुरलियों में आया है वही ब्रह्मा बाबा ने किया है। अव्यक्त मुरलियों में ब्रह्मा बाबा के बहुत सारे अनुभव आ गए हैं, जिसमें बाबा ने योग के लिए निराकारी स्थिति, धारणाओं का संपूर्ण स्वरूप निर्विकारी स्थिति, निरहंकारी स्थिति, सेवाओं में भी और धारणाओं में भी। पीछे आपको याद होगा अव्यक्त मुरली में नजदीक में आ गया है, 1 मास के अंदर, संतुष्टता, शब्द मुझे याद नहीं आ रहे, सभी धारणाओं का स्वरूप है, यानी जो संतुष्ट आत्मा है इसका अर्थ है कि उसने सभी दैवी गुण धारण कर लिए हैं। मुरली में एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहे हैं, ये नहीं, संपूर्णता नहीं, सर्व गुणों का, हाँ, दर्पण, राइट, याद आ गया, संतुष्टता सभी गुणों का दर्पण है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे महावाक्य। तो बाबा के अंदर बहुत संतुष्टता, और एक बहुत बड़ी चीज जिस पे हम ध्यान देंगे और आप चर्चा भी करेंगे, जीवन में भी उतार लें। देखो, बाबा भी संगठन में रहते थे, बाप थे वो, और बच्चे भिन्न भिन्न तरह के थे। आपको तो शायद पता नहीं होगा, कोई बच्चा ऐसे भी थे 2-3 जो बाबा से भी लड़ाई लड़ जाते थे, आप सोच नहीं सकेंगे इस बारे में, गुस्सा कर लेते थे, बाबा को भी बुरा बोलते थे, बाबा को भी सहन करना हुआ, लेकिन ऐसा नहीं लगा मैं सहन कर रहा हूँ जैसे बाप और बच्चे। और बहुत बड़ी बात ये थी कि फिर से उतना ही प्यार दिया उन्हें, उतना ही आगे बढ़ाया उन्हें। बहुत ये मैं भी इस बात पे चिंतन करता हूँ कि ये कितनी बड़ी बात है। जो वो व्यक्ति बाबा को बुरा बोल कर गया है, फिर भी मीठे बच्चे ऐसे नहीं करो ऐसे करो, भावनाएं चेंज नहीं होने दी। और इसका एक बड़ा कारण मुझे ये भी समझ में आता है कि ब्रह्मा बाबा को तो ये बहुत अच्छी तरह पता था कि मेरी जरा सी भी निगेटिव भावना इनको नष्ट कर देगी। इसलिए बाबा न तो किसी के लिए भी बुरा बोलते थे और न कभी वृत्ति में भी कुछ रखते थे। ये बहुत बड़ी चीज थी। मुझे एक आत्मा की बात याद रहती है जिसे ब्रह्मा बाबा थोड़े से कष्ट पाते थे, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो एक बार ऐसा ही हुआ, उन्होंने लड़ाई कर ली आपस में। दीदी जी बाबा के पास पहुंची, बाबा झोपड़ी में बैठे थे, डीप साइलेंस, शाम का समय, मग्न अवस्था। उसकी चर्चा, उसका उसको समझना तो वही समझ सकते हैं जो उस स्थिति में रहते हैं। दीदी पहुंच गई हिचकते कि बाबा वो दोनों फिर लड़ रही हैं, आप चलो ना। आप समझ सकते हैं हम बहुत डीप साइलेंस में योग की मग्न अवस्था में बैठे हों और कहीं ऐसा करना पड़े, हमें जाना पड़े उसे छोड़ के, तो कैसा लगता है। बाबा के मुख से निकल गया, मरने दो मुट्ठियों को, बाबा नहीं जाएंगे। हालांकि बाबा ने तुरंत संभाल लिया, लेकिन मैंने देखा इसे एक भावना का इफेक्ट ही उस आत्मा को कितना भारी पड़ा। बाबा बहुत प्यार से उसे समझाते थे लेकिन उन्होंने अपने को चेंज नहीं किया था। कैंसर हुआ उनको, 4 साल चला, नीचे से ऊपर को चल रहा था। मैं भी जाता था मिलने तो मुझे कहती थी, बड़ी निर्मल हो गई थी वो उस समय, मुझे कहती थी श्री बाबा तुम्हारा दोस्त है ना, उसे कहो मुझे बुला ले। मुझे बड़ी दया आती थी और मुझे याद आता था कि वो जो बाबा की फीलिंग्स थी वो इस पे काम कर रही। लेकिन बाबा ने उसे क्षमा तो कर दिया था, लेकिन बाबा की ये महानताएं हम इन चीजों से सीख लें। भावनाएं नहीं बदलने दी, प्यार वैसा ही रखा, आगे बढ़ाने का वैसा ही किया। बाबा की मुरली में शायद इसी संडे को था ना, कोई गिर गया है उसको धक्का दोगे क्या और उठाना है उसे। ये बाबा का प्रैक्टिकल जीवन था। कोई कुछ भी करके आ गया फिर चलो उमंग उत्साह। बाबा के पास आते ही आत्माएं अति उमंग उत्साह में आ जाती थी। और धारणाओं पर आप चिंतन करना, बाबा की मुरली से बहुत नम्रता, बहुत ह्यूमिलिटी, निरंकारिता की तो श्री बाबा ने महिमा की ब्रह्मा बाबा की। और तीसरी धारणा ही आ गई संपूर्ण निरंकारिता, मैंपन का संपूर्ण त्याग। मुझे बाबा की एक बहुत गहरी बात मिली मुरली से, इन्हीं अव्यक्त मुरलियों से, संडे वाली से, कि ब्रह्मा के त्याग को आप देखो, अपने अधिकारों का भी त्याग कर दिया था, वो भी बच्चों को दे दिया था। ये गहरी बात है, थोड़ी समझने की है तो हम ध्यान दें। मैंपन का कितना जबरदस्त त्याग उन्होंने किया बाबा ने, सूक्ष्मता से हम भी करते चले। और ये कैसे होता है, स्वमान से। मैं सोचा करता हूँ कभी, क्या ब्रह्मा बाबा को कभी संकल्प आया होगा मैं यज्ञ का चेयरपर्सन बनूं? आया होगा, डायरेक्टर बन जाऊं, क्यों नहीं आया नवीन भाई? हमारी सभा में बहुत बुद्धिमान भाई बहने बैठे हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, और बताओ कुछ। और बोल दो, पीछे वाले बोल दो, मैं सुन लूंगा। थोड़ा सा और बढ़ जाओ आगे, थोड़ा सा पहुंच रहे हैं आप। क्या चाहिए? और थोड़ा आगे बढ़ो। ब्रह्मा बाबा को आपको पता है, केवल मैं उसको अंडरलाइन करा देता हूँ और सब उसमें स्थित हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने उसके अनेक जन्मों का साक्षात्कार करा दिया था। बाबा ने बहुत कम बोला है वो मुरलियों में, कभी बोला कहीं देखा पगड़ी वाला है, कहीं देखा ताज वाला है। पगड़ी वाला माना राजा, जो पगड़ी वाले होते थे ना कलयुग में, पगड़ी होती थी ना ताज के रूप में। बाबा को अपना ये बहुत नशा था, सम्राट रहा हूँ द्वापुर से, सतयुग की बात बाद में करता हूँ, कलयुग में भी महाराजा रहा हूँ कई बार, और सतयुग में विश्व महाराजन रहा हूँ, उसके आगे ये डायरेक्टर, कितने होंगे उसके नीचे डायरेक्टर, सोच लो। अपनी श्रेष्ठ पोजीशन का नशा बहुत जबरदस्त था। उसके भेंट में बाकी ये सभी अचीवमेंट्स, ये पद, उसको लगते थे ये मेरे लायक थोड़ा ही है, ये तो छोटी बात हो गई, ऊपर से नीचे लाना हो गया, किसी सम्राट को कह दो डायरेक्टर बन जाओ। स्वमान बहुत ऊंचाई का, हम भी स्वमान को बढ़ाएंगे। पूर्वज हैं संसार को देने वाले, देवियों के दर्शन करके लोग डायरेक्टर बन जाते हैं, करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, किसके दर्शन करके? अरे नहीं, कुछ और बोलो, हमारे, ठीक है। धारणाओं में और भी चुन लेना। बाबा ने कहा ब्रह्मा ये आत्मा, मैं पन का त्याग करने में नंबर वन रही, इसलिए नंबर वन ले लिया। ये अव्यक्त महावाक्य है, बहुत पुराने, हम इस पे खूब चिंतन करेंगे और इसको अपना लेंगे, क्योंकि मैं पन का त्याग करने से क्या होता है, बुद्धि डिवाइन, हमारे सामने की सभी दीवारें ढह गई, रास्ता क्लियर हो गया। एक बात से आप समझ लेंगे, बाबा ने कहा स्वार्थ यदि तुम्हारे अंदर है, वो मैंपन ही है, तो तुम जो सकास देते हो उसके मार्ग में वो दीवार है, तुम्हारी सकास वहां जा ही नहीं रही जहां तुम्हें भेजना है। सेवाओं के फील्ड में बाबा ने सबको आगे बढ़ा दिया, और पहले ही कहते थे मामा मेरे से भी अधिक बुद्धिमान है, हालांकि बुद्धिमान तो ब्रह्मा ही है सबसे ज्यादा, मामा भी जानते ही हैं सबसे अधिक बुद्धिमान, लेकिन बच्चों को बहुत आगे बढ़ा दिया। मेरा नाम हो ये नहीं, बच्चों का नाम हो जाए, सेवाओं की क्वालिटी बच्चों में भर दी, और अवसर भी सभी बच्चों को दे दिए, प्रसाद की तरह बांट दिया। सेवा के बारे में भी बाबा की कैसी स्थिति थी वो हम करेंगे, और सकास तो बाबा बहुत ज्यादा देते थे सबको, विश्वकिशोर दादा का तो एक उदाहरण है, जब वो बीमार हुए और बाबा को मैसेज आया कि बाबा ऑपरेशन हुआ था उनको मुंबई में, तो बहुत तकलीफ थी, रात को नींद नहीं आ रही थी, शाम को फोन आया बाबा को कि दादा को नींद नहीं आ रही, बहुत पीड़ा है। तो उस रात बाबा शायद रात जागे थे और उन्हें वाइब्रेशंस दिए थे, दर्द उनका खत्म हो गया था, लेकिन बाबा सारे संसार को ही वाइब्रेशंस दिया करते थे, ब्रह्मा थे ना, बच्चों के जो समाचार आए उन सब को वाइब्रेशंस ही देते थे। जिनके भी समाचार आए, थोड़े उल्टे हुए, थोड़े विघ्न आ गए, किसी को कष्ट हो गया, किसी की स्थिति डाउन हो गई, कोई बंधन में आ गई माताएं या कोई भाई, उनको वाइब्रेशंस ही बहुत दिया करते थे। सेवाओं के बारे में भी बहुत अच्छी तरह चिंतन करेंगे तो ब्रह्मा जैसी समर्पणता, समर्पणता का यही अर्थ नहीं होता कि बाबा जैसा सब कुछ, बाबा को तो छोड़ना ही था क्योंकि उनको ब्रह्मा बनना था और उनके द्वारा यज्ञ की स्थापना होनी थी, लेकिन हम समर्पण भाव पैदा करें, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा, समर्पण भाव बढ़ाएंगे बाबा की ओर, बाबा की तरह। इस पर बहुत अच्छा ध्यान देना है, बहुत अच्छा चिंतन करेंगे, क्योंकि संपूर्ण समर्पणता ही संपूर्णता है, ये बाबा के महावाक्य हैं। तो इस तरह बाबा की बहुत सारी बातें निकालेंगे, छोटी भी निकालेंगे, जो बाबा के जीवन में थी, बाबा व्यवहार कैसे करते थे, बोल कैसे बोलते थे, हम सब मुरलियों से और अपनी दिव्य बुद्धि से समझ ही सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप बाबा को फॉलो करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे ज्ञान के चिंतन से, तो हमारी बहुत अच्छी स्थिति होगी और हमारे कदम निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। मैं आपको एक चीज जो बाबा के संदेशों में मैंने सुनी थी वो आपके सामने रख देता हूँ, और वो बिल्कुल सिंपल है और सभी आराम से कर सकते हैं, उससे योग भी बढ़ेगा, पुण्य भी बढ़ेंगे। बाबा ने गुलजार दादी को बहुत बहुत साल पहले एक भोग में यहाँ मधुबन में एक संदेश दिया था, एक सीन दिखाया था। बाबा एक पहाड़ी पर हैं और सभी को नीचे से बुलाया, तो सभी बहने भाई पहाड़ी पर पहुंच गए और सामने दिखाया ग्लोब है, और ग्लोब काला है। बाबा ने कहा ये ग्लोब विश्व तमो प्रधान, अब आप सभी बच्चे इसको सकाश दो। तो सभी ने सकाश देनी शुरू की, क्या सीन था कि सभी के मस्तक से किरणें निकलकर ग्लोब पर पड़ने लगी और ग्लोब का रंग बदलने लगा और कुछ ही देर में गोल्डन हो गया। तो बाबा ने कहा ऐसी ही सकाश तुम बच्चों को रोज इस ग्लोब को देनी है। तो हम सभी ये काम किया करें, आप अपने घर में बैठकर, छत हो तो छत पर जाकर, कहीं खुली जगह हो तो खुली जगह जाकर सीन इमर्ज करेंगे, मेरे सामने विश्व का गोला है बड़ा सा, इधर मैं इसकी पूर्वज, संसार की पूर्वज, विश्व कल्याणकारी, इष्ट देव देवी, अपने को अच्छे स्वमान देंगे, मास्टर सर्व शक्तिवान, मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। फिर बाबा को योग लगाएंगे, किरणें आई, और फिर अभ्यास करेंगे, मुझ आत्मा से किरणें पड़ रही हैं इस ग्लोब पर, एक दो तीन मिनट। उसके बाद बहुत अच्छे संकल्प भेजेंगे ग्लोब को, ग्लोब सारे संसार की आत्माओं को सुंदर संकल्प देंगे, हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस सबको पहुंचेंगे, सबको फायदा होगा, संसार की सभी आत्माएं सुखी हो जाएं, सभी दुखों से मुक्त हों, सभी के विघ्न समाप्त हों, सभी की चिंताएं समाप्त हो जाएं, सभी निर्भय हो जाएं, सभी निरोग हो जाएं, सभी के अंदर का देवत्व जागृत हो जाए, सभी का प्रभु मिलन हो जाए, सभी बाबा से अपना अधिकार ले लें, आप सभी सुखी हो जाएं। एक दो मिनट, कितना मजा आएगा आपको। जो संकल्प देंगे वो रिटर्न होगा, सुख की अनुभूति होगी, बहुत सुंदर अभ्यास हो जाएगा। तो सभी इस पार्क में आए हैं और सभी जो भी प्रोजेक्ट आपको लेने हैं, जो मिले, उन पर बहुत अच्छी तरह पूरा समय सभी काम करेंगे और तेज कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है, सबको दिखता होगा कि 2020 से 30 का जो पीरियड है ये विश्व परिवर्तन कर देगा पूरी तरह। धरती भी बदल जाएगी, आकाश भी, वायु भी, जल भी, और बदल जाएंगे कौन, मनुष्य भी, हम तो बदलेंगे सबको। और मुझे ऐसा भी लगता है, वो थोड़ी खराब सी बात है, पर लगता है कि ये संसार धर्म राजपुरी भी बन जाएगा, सबके हिसाब किताब भी चुकतू होंगे और समय उन सभी ब्राह्मणों को भी संपूर्ण बनाएगा जो नहीं बनना चाहते। ऐसे भी तो बहुत हैं जो नहीं चाहते। अरे ठीक है, कौन बना है, क्यों झंझट में गए, छोड़ो इस नई टेंशन को भी, अपना ऐसे ही ठीक है। जो थोड़ा बनना चाहते हैं, समय उनको बनाएगा, समय शिक्षक बन जाएगा, लेकिन समय की मार थोड़ी भारी होती है, लेकिन उसकी मार भी आत्माओं को बहुत कुछ सिखाएगी। तो समय की सूक्ष्मता को समझते हुए जो साकार मूल्यों में बाबा अब तक कहते आए इस अंतिम समय के लिए, वो सब हम देखेंगे, साक्षात्कार होंगे, इष्ट देव देवियां प्रकट होंगी जहां तहां, सुनते हैं ना मुरलियों में, साकार में बहुत आया है, अभिव्यक्त में बहुत आया है, चारों ओर आवाज होगी, हमारे मुक्ति दाता आ गए हैं, हमारे सहारे दाता आ गए हैं, हमारे दुख हर्ता आ गए। ये क्यों आवाज होगी, क्योंकि हाहाकार भी साथ साथ चलेगा। इसलिए हम सभी का परम कर्तव्य होगा, सब चिंतन करेंगे यहाँ आकर, आप नए हैं या पुराने हैं इसका कोई महत्व नहीं, जो करे वही पूर्वज वही महान। तो बस तैयार करें हमें, संसार को बहुत कुछ देना है, इसलिए मन की शक्ति के रिसर्च भी करते रहें, साइलेंस पावर की रिसर्च भी करते रहें, और अपनी स्थिति को भी ऐसा अच्छा बनाते चलें कि हम संसार को दे सकें। और मैं ये कहूंगा लास्ट लाइन, जो कुछ छोड़ा जा सकता है, स्थूल या सूक्ष्म, पहले सूक्ष्म व्यर्थ जो है, उसको छोड़कर लक्ष्य बना ले, उसे हमें छोड़ना है, जहां जहां हमारा टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रही है, उसको छोड़कर हमें अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है कि हम संसार को बहुत कुछ दे सके। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।